من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دعوت کے مبارک عمل کی طرف منسوب فرمایا وہ نسبت عطا فرمائی یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد the brothers are honorable Hazrat Iqtisab is saying that along with Allah subhanahu wa ta'ala making us Muslims along with that Allah subhanahu wa ta'ala has connected us with the effort of da'wah in Allah that also is a huge ni'mah and a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala
جس چیز کے جس نعمت کے نعمت ہونے کو بندہ سمجھتا ہے اور جس مرتبے کی وہ نعمت ہے اس مرتبے کے اعتبار سے اس کو سمجھتا ہے تو اس کے شکر کے جذبات بھی اس کے دل میں ویسے ہی آتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھنے اور اس کے تقاضوں کو نبھانے کا احساس بھی بندے کو ہوتا ہے
When an individual considers a favor to be a favor, and he considers that favor to be a real favor to the extent of the magnitude of that favor, then to that extent, he considers it to be a favor, to that extent, the urge and the desire in his heart comes into existence to thank Allah subhanahu wa ta'ala. And to that extent, he will be able to fulfill all the demands and the taqazas of that narrow.
اللہ کی ایک دن نعمتوں کا ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے اس میں یہ جذبہ بھی ہونا کہ اللہ آپ نے دعوت کی طرف منسوخ فرما دیا اب وہ نعمت کو بھی ہمارے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا بنائیے
along with the other favors that Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with we must thank Allah subhanahu wa ta'ala for connecting us with the effort of da'wah in Allah and we must make dua to Allah that oh Allah let us thank you for this ni'mah and let us fulfill all the demands that are connected to this ni'mah.
Da'wat ke kaam karne walon mein bhi ye jo majma is waqt hai Allah pak ke fazl se hum jama hain yahan par ye unme bhi muntakhab tabqa hai to uski bhi aadmi ko ehsaas hona chahiye ke goya hum buniyadi logon mein se hain is aitbaar se agar hum uske zimmedaron par khade honge تو اس کے تقاضے پورے ہوں گے اس کا شکریہ ادا ہوگا تو اسی اعتبار سے ہمارے لیے محرومی کا فیصلہ ہوگا
But brothers, not just that we are connected to the effort of da'wah, but rather those who have gathered here together, these brothers, mashallah, are even more so, in other words, in the first line, and more so connected with the effort of da'wah ilallah. Allah Ta'ala, out of all those who are connected to the effort of da'wah, has chosen this group of brothers even more so for the effort of da'wah ilallah. So the more we will fulfill the demands of the effort of da'wah and thank Allah subhanahu wa ta'ala for this ni'mah, the more Allah subhanahu wa ta'ala will give us progress. Otherwise, if we, this group of brothers, does not thank Allah for this ni'mah and does not fulfill the demands of this favor, then this will be a means of great deprivation from Allah subhanahu wa ta'ala.
ہم اس مجمعے کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دعوت کے کام کی جو رخ ہے دعوت کے کام کا جو بہاؤ ہے یا جو پھیلاؤ ہے وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے اگر ہم ایسے متحرک ہیں قوی ہیں ایمان کے اعتبار سے طاقتور ہیں اور قربانی دینے والے ہیں تو سمجھا جا سکتا ہے کہ پورے ملک میں کام کی سطح بہت اونچی ہے اور اگر ہم سارے سونے والے ٹائپ کے ہیں سست ہیں تقاضوں کو پورا کرنے والے نہیں ہیں تو سمجھا جا سکتا ہے کہ نام تو لگا ہوا ہے لیکن کام کچھ بھی نہیں
Because these brothers, you brothers, all of us who have gathered here together, are the brothers who have been selected by Allah subhanahu wa ta'ala from the rest. From looking at this gathering, we can have a good idea of how much the effort of da'wah ila Allah will spread and will come into existence in this country. Because if this group of brothers is very active, they have that desire, they have that urge, they have that eagerness to fulfill all the demands of da'wah ila Allah, then mashallah we can see that the effort of da'wah and the deen will spread. But if this group of brothers, the elite, so-called we can say, are very, in other words, lethargic, lazy, and not giving our full to this effort, then we can tell just by looking at this gathering that the effort of da'wah ila Allah will not really come into existence that much.
उसकी सबसे पहली बुनियादी बात ये होती है मेरे दोस्तों कि जिसकी तरफ हम बुला रहे हैं उसकी तरफ हम खुद कितने मायल हैं।
Because the first thing to keep in mind is that which we are inviting towards. How much of that is in my life?
कितना यकीन उसका हमारे दिल में है?
How much conviction of that which we are inviting towards is in my own heart?
और कितना भरोसा उसका हमारे दिल में है?
And how much reliance do we have on that which we are inviting towards?
और क्या गुमान उसका हमारा गुमान उसके बारे में हमारे साथ है?
And how much conviction and thinking, in other words, how much anticipation do we have with regards to what we are inviting towards?
हज़रत जी मौलाना साहब अपने बयान में फरमाते हैं कि जैसा ईमान होगा अल्लाह के साथ वैसा गुमान होगा अल्लाह के साथ।
हज़रत जी मौलाना साहब अल्लाह mentions that to the extent whatever our conviction is, our iman is with Allah subhanahu wa ta'ala, that will be our expectation from Allah subhanahu wa ta'ala.
Because in this world, for insan ke liye sabse iman wale ke liye sabse badi cheez hai Allah ke sath gumaan ka sahi hona.
Because the most important factor in this life for a mu'min, for a believer, is that his expectation with Allah subhanahu wa ta'ala must be correct.
क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद ही फरमाया है हदीस कुदसी में कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ रहूंगा।
अल्लाह ताला हिमसेल्फ इन हदीस कुदसी हैज मेंशनड दैट आई एम विद माय स्लेव अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी।
मगर बंदा जो गुमान करता है अल्लाह ताला के साथ वो अपने ईमान के अतबार से कर सकता है, अपने ईमान से हटके उनके साथ गुमान नहीं कर सकता।
But the point is that a believer can only expect from Allah ta'ala to the extent of the strength of his iman. However, his iman is, that is how he will have expectations from Allah subhanahu wa ta'ala.
इसलिए दावत के काम करने वाले के लिए सबसे पहले अपनी तरफ देखना चाहिए कि खुद जिसकी तरफ मैं दावत दे रहा हूँ, मैं खुद उसकी तरफ कितना हूँ।
That's why the first point for a da'i, for those who are involved in the effort of dawah, to keep in mind is that which I am inviting towards. How much of that am I involved in, and am I how much of that is in my life?
मतलब मेरे दोस्तों ये होता है इस बात का कि कितना अल्लाह को मैं चाहता हूँ।
The summary of this is that how much do I want, desire and love Allah subhanahu wa ta'ala?
मासिवल्लाह के साथ मोहब्बत और अल्लाह के साथ मोहब्बत में क्या निस्बत है? क्या अल्लाह के अलावा कोई और मोहब्बत भी मेरे दिल में है?
What is the connection between loving Allah subhanahu wa ta'ala and loving other than Allah subhanahu wa ta'ala? Is there love of other than Allah subhanahu wa ta'ala in my heart also?
और अल्लाह तबारक व तआला बहुत गयूर है, अगर वो उनके अलावा की किसी की मोहब्बत हमारे दिल में देखेंगे वो हमारे दिल में नहीं आ सकती।
Allah subhanahu wa ta'ala only comes in that heart in which there is only his love. If he sees that we love other than Allah, then Allah ta'ala will not put his love in our heart.
अल्लाह ने फरमाया कि मैं सबसे गैरतमंद हूँ, गैरतमंद।
Allah subhanahu wa ta'ala is the highest in terms of self-respect, in terms of ghairat.
तो इसलिए उनकी गैरत का तकाजा ये होता है कि उनके साथ किसी को भी शरीक किया जाए, थोड़े को भी। वो कहते हैं जिसको तूने शरीक किया है उधर जा, मुझे नहीं चाहिए।
That's why the result of Allah subhanahu wa ta'ala being having this ghairat and self-honor is that Allah subhanahu wa ta'ala, when he sees that there is even the slightest level of shirk with Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah subhanahu wa ta'ala said, okay, go towards the one who you are aspiring with, don't come towards him.
मोहब्बत में शिरकत गवारा नहीं होगी।
There is Allah Taala does not tolerate any partnership in love. Allah Taala wants us to love only Him.
एक औरत नहीं पसंद करती, एक औरत नहीं गवारा कर सकती, तो वो तो अल्लाह है।
When one woman cannot tolerate her husband loving other than her, then how can Allah Ta'ala tolerate?
No, mard pasand kar sakta hai ki uski aurat kisi aur se mohabbat kare.
And neither does the husband like that his wife loves other than him. So how can Allah Ta'ala tolerate?
Insan ka to koi hisab hi nahi hai khaliqul khallaq akbar ke muqable mein.
And there is absolutely no comparison between the human beings and Allah Subhanahu wa Ta'ala who is the creator.
इसलिए मेरे दोस्तों सबसे पहले जिस बात की फिक्र मुझे और आपको करनी है वो ये है कि मासी अल्लाह की मोहब्बत मेरे दिल में से निकली नहीं निकली.
That's why the first effort we have to make and the first point we have to see is that did the love of other than Allah Subhanahu wa Taala leave our hearts or not?
अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिल. जो मासी अल्लाह है वो बातिल है.
Everything other than Allah Subhanahu wa Taala is invalid, batil, doesn't exist.
मासी अल्लाह की मोहब्बत डायरेक्टली हराम है, इनडायरेक्ट जायज है. अल्लाह की निस्बत से उसे आप मोहब्बत रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह की निस्बत को हटाकर किसी से नहीं रख सकते, हत्ता कि ना बीवी से ना बच्चों से.
Loving other than Allah Subhanahu wa Taala directly, in other words, because of loving Allah, we can love the creation. But if we love
it, अल्लाह के हुकुम की वजह से,
because Allah commanded us to love certain creations. For example, wife, parents, etc. Then that is permissible. But if we are loving the creation directly, without the intermediary of the command, not because of the command of Allah, then that is haram.
अब हम अपने दिल में देखेंगे कितनी ज़्यादा मोहब्बतें हमारे दिल में हैं.
Now we have to analyze our own hearts to see how many loves do we have in our heart.
उसकी मोटी पहचान ये है कि नमाज में कितना हम इधर उधर जाते हैं.
Just a quick test. For that is to see how much is my focus in salah and what do I think about in my salah.
Agar Allah se totally mohabbat ho to namaz mein kahan jayega apne mehboob ko chhod ke.
Because if we really love Allah Subhanahu wa Taala alone, then in salah where else is his focus going to go other than the beloved Allah Subhanahu wa Taala.
हमारा तो हाल ये है कि इमाम को काम शुरू करा देते हैं कि तू शुरू कर, उसके बाद तेरे मैं जाकर आता हूं.
Our salah is such that we get the imam involved in the recitation in salah.
इमाम को हम इन्वॉल्व करते हैं कि मैं तुम शुरू कर देता हूँ.
Yeah, we put the imam to work and our mind is somewhere else. We go to do something else.
हिसाबात शुरू हो जाते हैं.
We start to calculate our things.
हम पैसे वसूल करने लगते हैं.
We start to collect our money in our salah.
बीवी बच्चों से मोहब्बत वाली बातें शुरू हो जाती हैं.
We start to have good talks and talks of love and light-hearted conversations with our family during salah.
इस वजह से बगैर खुशो खुजू वाली नमाज को अल्लाह पसंद नहीं करता. बहुत मेहनत की चीज है मेरे
बुजुर्गों.
एक मरतबा हम जमात में गए थे भोपाल के करीब रायसी में एक जगह है. वहाँ पर कुछ बूढ़े लोग जमाती तबलीगी हमको मिले.
There we found some very elderly in age brothers who were involved in the effort.
वो हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह की खिदमत में बहुत रहते थे.
And those brothers were in the service in the khidmat a lot in the मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह.
उन्होंने उस वक्त के हालात सुनाए हमको.
So they told us what used to happen at that time.
और हजरत की बातें सुनाई.
And they told us the mafuzat and the sayings of मौलाना यूसुफ
रहमतुल्लाह. जो बातें उनकी बहुत ही अजीब और गरीब थी जो हमें याद रह गई, उसमें से एक बात ये याद रह गई कि सुना हजरत मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे कि ख्याल जो है वो अना का हिस्सा है.
One thing that मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह used to say and that which we remember is that this ख्याल, these thoughts that come, this is connected to the word अना, me.
हिस्सा, ख्याल का हिस्सा है. A part of.
It's a part of the ego.
अगर नमाज में अपना ख्याल में यहाँ नहीं रह सकता हूँ तो अना यानी मैं नमाज में नहीं.
So if I cannot keep my thoughts in salah, then that means I am not in salah.
अब अंदाजा फरमाइए कि अगर मैं खुद नमाज में नहीं हूँ तो फिर क्या कर रहा हूँ मैं.
So just saying that if I myself am not in salah, because the thoughts are me, I am the thoughts. The thoughts are part of me.
बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है. और ये सारी, ये सारा खुलासा जाता है वहाँ पर कि किसके साथ मोहब्बत है. कौन दिल में बैठा हुआ है.
who is in our heart?
कौन दिल पे काबिज हो चुका है?
Who has dominated our heart?
कौन दिल की गहराई में उतर चुका है?
Who has entered into the depths of our heart?
किसके जिक्र और फिक्र में, किसके ख्यालात में मैं घूम रहता हूँ?
In whose thoughts am I lost?
इसलिए कि जिसके ख्यालात में आदमी घूम रहता है, जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसी के ख्यालात में आदमी घूम रहता है।
When somebody loves another person, then he is lost in that person's thoughts.
हत्ता कि अगर कोई उसको डिस्टर्ब करना चाहे तो वो डिस्टर्ब नहीं होता।
Even to the extent when he is lost in the thoughts, if somebody tries to disturb him, he doesn't get disturbed. He is focused on his thoughts.
अरबी का एक शायर है, वो ये कहता है कि अजलुल अवादिल हौला कल्बी ताईही वहवल अहिब्बति मिनहु फी सौदाईही। कि मलामत करने वालों की मलामतें मेरे दिल के अतराफ फिरती हैं और मेरे महबूब की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता।
The post meaning is that those who talk bad about me, it doesn't distract me and enter into my heart. That just goes around and circles around my heart. It doesn't penetrate inside. It doesn't affect me because my heart is already super involved in the thoughts and the thinking of my beloved Allah Subhanahu
Wa Taala. वो तो अपने महबूब की बात कर रहा है.
Okay, he's talking about his beloved.
असल में एक आशिक थी, उसकी माशूका के बारे में लोगों ने बहुत मलामत की कि तू कैसा है, तू ऐसा है, तूने उसके साथ क्यों दोस्ती कर ली, क्यों उसके साथ मोहब्बत में लग गया, और जो बड़े भी छोटे भी दोस्त अहबाब भी सारे उसको मलामत कर रहे थे। तो उसने ये शेर कहा था कि जितने तुम लोग बोल रहे हो ना, ये सब बाहर से गिर रहा है मेरे, लेकिन मेरे दिल के अंदर की चीज़ को नहीं छेड़ सकते।
And people started to rebuke him, why are you loving that person, why are you attracted to that person, why are you always thinking about that person? He said, all your negative statements about me, all your talking bad about me, rebuking me, all that is just roaming around, it's not entering my heart, I'm not affected, because my heart is connected and thinking and lost in the thoughts of Majnun.
Hatta ke Majnun, jo ke Tabari mein se hain, Tabari Tabari mein se, Qais unka naam hai, unke baare mein mashhoor ye hai, ki बहुत लोग उनको मलामत करते थे कि वो छोड़ दो, क्यों खामखा तुम मोहब्बत में फंसे हो। मुसलमान थे, मुत्तकी आदमी थे, परहेजगार थे, बहुत बाशरा थे और नमाजी थे, लेकिन मोहब्बत हो गई थी लैला से। तो उनके वालिद साहब जो हैं हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लेके गए थे दुआ के वास्ते, वो ताबईन में से थे। तो इसलिए इमाम हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दुआ करवाई थी, और फिर उसके बाद में उनको उमरे को ले गए, और तवाफ तय हुआ कि इसको उमरा कराएंगे, तवाफ के बाद में दुआ कराएंगे कि लैला की मोहब्बत दिल में से निकल जाए, और वह इंशाल्लाह ताला वह काम हो जाएगा, दुआ मांग लेंगे तो ये निकल जाएगी, उसके दिल से खाली हो जाएगा, दिल मुब्तला हो गया, फंस गया। तो मजनू ने तवाफ किया, और तवाफ करने के बाद उनसे कहा कि तुम तौबा कर लो, लैला की मोहब्बत से पनाह मांग लो अल्लाह से। तो वो कहने लगे, इलाही तुम तो बिल्कुल मासी वलाकिन हुब्ब लैला ला तुम।
So, as we know the famous story of Majnun, he was a Tabar Tabi'i.
He was
from the Tabi'i. So his name was Qais. So he was a very pious person, mashallah. But one thing happened is that his heart, he fell in love with Layla. So his father was very concerned about this. People were very concerned, pious person, but he fell in love with a girl. So they took him to Hazrat Hassan. So Hazrat Hassan radiallahu ta'ala anhu, said, Rahmatullah Ali said to the father that, you know what, take him for Umrah and let him do tawaf. After doing tawaf, let him make this dua that, wallah, I do tawaf from every sin, and make dua that the love of Layla comes out. So this happened, so the father took Majnun Qais, his son, for Umrah. After they did tawaf, he said, now do tawaf from every sin. So he said, Ya Allah, I do tawaf from every sin, but the love I have for Layla, I don't do tawbah for that.
बल्कि उसमें इजाफा ही चाहता हूँ।
Rather he said, I want more love of Layla.
चाहे लोग मलामत करें या कुछ भी करें।
Regardless of how much people talk bad about me and rebuke me.
मोहब्बत की खुसूसियत है कि उसी का हो जाता है बंदा।
The special effect of love is that a person completely starts to belong to the person who he loves.
حبك الشيء يعمي ويصم.
The love of something makes a person blind and deaf.
औलाद की मोहब्बत होती है तो तीन खुसूसियतें आ जाती हैं इनकी वजह से.
A person starts to love his children, and there are three special things that come into his life.
His heart. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بچے کو گود میں لیا. شاید آپ کا نواسا تھا, آپ کی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی کا بچہ. اس کے بعد آپ فرمایا کہ انکم لتبخلون وتجبنون وتجاهلون.
And then he said that you children, they make a person a means of miserliness. You make a person a coward, and you make a person ignorant.
محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی اس کے علاوہ سب سے جاہل ہو جاتا ہے.
The effect of love is that a person becomes ignorant of anyone except the beloved.
اور بخیل ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی اس پر خرچ کرنے میں کمی نہ آئے کسی اور جگہ خرچ کرنے کی وجہ سے.
And then he becomes very bakhil and stingy when he starts to love someone, that because of spending other places, it should not be that my spending on my beloved becomes less.
Aur buzdil ho jata hai ki kahin isko haraj na ho meri wajah se.
And he becomes a coward that because of me, then this beloved should not be harmed.
To aapne ye bataya ki jab maasiw allah ki mohabbat dil mein aayegi to ye teen asraat aa jayenge. حدیث کے حدیث سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ماسیو اللہ کی محبت کے یہ تین اثرات ہوں گے.
So the hadith mentions that these are the three effects of loving other than Allah subhanahu wa ta'ala.
اس لیے ہم سے مال خرچ نہیں ہوتا.
That's why we're not able to spend our money.
اس لیے ہم اللہ کے راستے میں بے جگری سے نہیں نکلتے.
That's why we don't go out of the path of Allah subhanahu wa ta'ala without hesitation.
اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو باریک بینی سے نہیں جاننا چاہتے.
That's why we don't want to look deep into the rights of Allah subhanahu wa ta'ala.
ورنہ اگر آدمی کو سچی محبت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے راضی ہوتے ہیں, کس سے ناراض ہوتے ہیں, کہیں سے راضی ناراض نہ ہو جائے, کہیں اس سے ناراض نہ ہو جائے, یہ لخلقہ آدمی کو رہے گا تو تحقیق کا جذبہ اس میں ہوگا. یہ مطلب ہے کہ علم سیکھنے کا, کہ تحقیق کا جذبہ آ جائے ہر مومنٹ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے.
When a person really loves Allah subhanahu wa ta'ala, then he will always be in this worry that it should not be that I do something which makes Allah subhanahu wa ta'ala upset because he's my beloved. I should not do anything that causes the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. So because of that, always his mind will be involved in the quality of tahqeeq and research, trying to find out what Allah subhanahu wa ta'ala wants. That's why we say that the real goal of ilm and knowledge is to find out and to always be in that zeal and desire to find out what my Allah ta'ala wants, what makes my Allah ta'ala happy.
آدمی ڈرنے لگتا ہے. ہرگز بھی ایزی نہیں لے سکتا کسی بات کو. جب کوئی بہت ہی حساس کام آدمی کر رہا ہو تو تھوڑی سی مسٹیک بھی پورا کام خراب کر سکتی ہے. اگر آپ کے لفظ میں محمد ہے اور محمد میں ای ڈی ہے ایم ایم کے بعد میں اے ڈی نہیں ہے بلکہ ای ڈی ہے مسٹر محمد میں, اور آپ جو ہے نا اپلائی کر رہے ہوں ویزا کے لیے یا کسی اور کام کے لیے, تو آپ دھیان سے دیکھیں گے کہ میں نے محمد میں ایم ایم کے بعد میں اے ڈی لکھا ہے یا ای ڈی لکھا ہے. کیونکہ اگر اے ڈی میں نے لکھ دیا ای ڈی کی جگہ, میرے پاسپورٹ میں ای ڈی ہے وہاں پہ میں نے لکھ دیا اے ڈی, ظاہر ہے کہ ڈیٹا ریجیکٹ ہو جائے گا, ویزا نہیں ملے گا. جب آدمی ڈرتا ہے کسی چیز سے تو بہت کیئرفل ہو جاتا ہے.
And he spells his name with the ED, right, at the end of the name instead of AD. Then when he applies for a visa, for example, he's very careful to see how he's spelling his name in the application. Because if instead of ED, he writes AD, misspells his name, then the visa will be rejected. Likewise, when it's referred to, when a person is very cautious, very careful about something, then he focuses on it, and even the smallest things he does not take light. Just like that is the dealing with Allah.
Allah tbaraka wa taala wo malik ul mulk hai.
Allah taala is the owner of it.
Wo khallaq e akbar hai.
He is the creator, the greatest.
Wo badshahon ka badshah hai.
He is the king of all kings.
Sab ka rab hai wo.
He is the rab and the sustainer.
Wo qadir e mutlaq hai.
And he is capable of everything.
وہ جب چاہے, جو چاہے, جس کے ساتھ چاہے, جیسا چاہے, جہاں چاہے کر سکتا ہے, سیکنڈ میں کر سکتا ہے. چاہے تو پوری کائنات کو وہ ایک سیکنڈ میں ختم کر دے. اور اگر چاہے تو ایسی ہزاروں کائنات ایک سیکنڈ میں بنا دے. क्योंकि उसका उसका इरादा वजूद होता है.
Because his intent is existence.
إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.
Because Allah Subhanahu wa Taala, when he intends something, all he has to do is kun be and it.
और उनका मामला ये है कि अगर वो मखलूक से थोड़ी तवज्जो हटा ले सब मखलूक खत्म हो जाएगी.
And the matter of Allah Subhanahu wa Taala is if Allah Subhanahu wa Taala turns away from any creation even for one second, that entire creation will be destroyed.
Hijab un nur, उनका hijab nur है.
This veil is light.
لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه مدة بصري.
If you were to just remove that veil, then the effect of that nur would destroy everything.
और सब कुछ अल्लाह के सामने है, पीछे कुछ नहीं.
Everything is in front of Allah Subhanahu wa Taala. Nothing is behind Allah.
और ये पूरी मखलूक अल्लाह के नूर में तैर रही है.
And this entire creation is swimming in the nur and the light of Allah.
Allah نور السماوات والأرض.
Allah is the light of the skies and the earth.
नूर का तर्जुमा किया है मुफस्सिरीन ने मुनव्विर السماوات والأرض.
Mufassirin have mentioned nur over here to refer to munawwir, the one who enlightens the skies and the earth.
क्योंकि नूर की तारीफ ये है जो जाहिर लियाइनी हो मुज़हिर लिगैरी हो.
Because the translation of nur is that it is manifested itself and it manifests other things also.
जब आप नूर रोशन करेंगे तो खुद पहले जाहिर होगा फिर बिल्डिंग के अंदर जितनी चीजें हैं वो दिखाएगा.
So when you turn on the light, first you see the light and then you see everything else because of the light.
तो लाइट पहले जाहिर होती है फिर उस लाइट में सब चीजें जाहिर होती
है. So first you see the light and then because of the light now you see everything else.
Allah nuru samawati wal ard.
Allah Taala is the nur, the light, the one that lightens the skies and the
earth. और यही नूर उनका हिजाब है.
And his nur is also his veil.
और ये हिजाब अगर वो हटा दे तो सब खत्म हो जाए.
Allah removes his hijab, everything will be destroyed.
अब आप बताइए कि कायनात पूरी की पूरी, पूरा यूनिवर्सल, पूरी कहकशाएं, पूरे मिल्की वे जो आसमानों में है, वो सितारे, चांद, सूरज, सितारे, बड़ी बड़ी मखलूकात और जमीन की पूरी मखलूकात, पहाड़, दरिया, सारे के सारे नबाता, जमादात, हैवानात और सारे इंसान और सारे शहर, सारी बस्तियां, अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में खत्म कर दे. उससे मोहब्बत करना है, उसकी नाराजगी का खौफ रखना है कि नहीं वो नाराज ना हो जाए. दावत का काम करने वाले को मेरे दोस्तों सबसे पहले अपना रुख सही करना है. नहीं तो जो दावत के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो सकते, हम खाली बोलते रहेंगे.
If the direction is not correct, then the taqaza and the demand of da'wah will not be fulfilled. You'll just be talking, but nothing will happen.
ये मोहब्बत है जो बड़ी से बड़ी कुर्बानी पे आदमी को उठा देती है.
It is that love of Allah that makes a person stand on every demand of him.
और अगर मोहब्बत नहीं है तो हर चीज मुसीबत बन जाती है.
If the love is not there, then everything seems like a burden for us.
अगर मोहब्बत नहीं है साल के चार महीने का मुतालबा करोगे तो कहाँ से टूटेगी.
If we do not have that love for Allah Subhanahu wa Taala, and then we are asked to spend 4 months every year, how is our inside going to be ready for that?
वो चार महीने के बाद में दो महीने निजामुद्दीन का तकाजा करेंगे तो कहाँ से उठ पाओगे?
And after the 4 months, then we will say, now spend 2 months in Markaz Nizamuddin. If the love of Allah is not there, how is a person going to?
मकामी मरकज के तकाजे मजीद आ जाएंगे तो कहाँ से पूरे होंगे?
Then when the local markaz, the demand to spend time local markaz, that takaza is presented.
जमातें आ जाएंगी तो नुसरत कैसे होगी? अगर जमातें मुसलसल आ जाएं तो नुसरत कैसे होगी? एक आ गई आपने मोहब्बत का इजहार कर दिया, इकराम कर दिया, दूसरी आ गई मोहब्बत का इजहार कर दिया, तीसरी आ गई तो यार परसों ही तो आई थी, कल ही तो जमात आई थी, चार दिन पहले तो आई थी, अरे जिम्मेदारों को बोलो भाई इतनी जमातें भेजेंगे तो कौन सा मारेगा.
If the real love is not there, then one jamaat comes, mashallah, we express our love, we do ikram. Another jamaat comes, we express our love, we do ikram. Third, fourth jamaat comes, we say, Allah, we just said a jamaat, how many jamaat to do ikram? Tell us yourself not to say any jamaat to do ikram.
Mohabbat mein ye sawal nahi hota.
But when love is there, then this attitude is not there.
Aapka beta ghar mein aaya, aapke roza na aaye. बेटा जब घर में आता है तो रोजाना है, आपको कोई इतराज नहीं.
Your son, the son comes every day inside of our house, but we don't have any objection.
मेरे दोस्तों भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए मोहब्बत को फर्ज फरमाया ईमान वाले
पर. That's why Allah Taala has made love an obligation and farila, farz.
Teen cheezon ki mohabbat farz farmayi hai.
It is farz. It is an obligation, requirement to love three things.
Ek Allah se mohabbat.
One is to love Allah.
Dusre Allah ke rasool se mohabbat.
Number two is to love the rasool of Allah.
Aur teesre Allah ke deen ki mehnat se mohabbat.
And the third is to love the effort of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala.
اور اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اگر تینوں کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت ہے میرے عذاب کا انتظار کرو.
And Quran says that if the love of anything other than these three is more than these three, then wait for the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala.
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره.
Allah says wait until Allah ta'ala brings his punishment.
ہماری دل تو چاہت دنیا بھر کی چاہتوں سے بھرے ہوئے ہیں.
Our hearts unfortunately are filled with so many desires of this
world.
We have our own passions.
हमारे अपनी तमन्नाएं हैं.
We have our own desires.
हमारी अपनी मुरादात हैं.
We have our own goals in mind.
ईमान वाले के लिए तो सिवाय अल्लाह के किसी की नहीं रहना है.
The person of iman, he doesn't belong to anyone except Allah.
जिससे हम अल्लाह के अलावा मोहब्बत कर रहे हैं वो एक बुत है.
Anything we love other than Allah, that is an idol that is in our heart.
अल्लाह के अलावा जिसकी बात मानी जाती है वो खुदा होता है.
If we obey anyone other than Allah, then that becomes our object of worship.
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. جو اپنی خواہش کے مطابق جو کام کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ اس نے خواہش کو خدا بنایا.
Quran says if a person follows his desire, then he has made his desire the object of his worship, his God, his ilah.
اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ نے تعریف فرمائی وہ یہ کہ ان کا جو رخ تھا دل کا وہ صرف میری طرف تھا.
That's why Allah تعالیٰ when he talks about Ibrahim ala nabiyina, he says that direction of his heart was only towards Allah.
Is ya rabbahu biqalbin salim, wo apne parwardigar ke darbar mein qalb salim ke sath aaye.
That he came to his Rabb, he presented himself to his Rabb with a salim, healthy heart.
Har cheez se mehfooz tha wo, har kisam ke disturb hone se mehfooz tha.
The heart was protected from any disturbance, anything other than Allah subhanahu wa ta'ala.
حتیٰ کہ ہمارے لیے اللہ تبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اس کی تجدید کو مقرر فرمایا. اصل یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے, ان کا اقرار ہے. کہ میں نے اپنا منہ اللہ کی طرف کر لیا. ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ نماز شروع کرنے کے بعد پڑھتے ہیں.
For us, we recite this.
یہ پہلے پڑھتے ہیں.
We recite this dua.
اور بعض ائمہ کے پاس میں اس کو نماز شروع کرنے کے بعد سنا سے پہلے پڑھنے جائے.
According to some ائمہ مجتہدین, this is to be recited after starting the salah, after the sana.
مگر ہمارے لیے مقرر کیا گیا کہ یہ پڑھنا ہے سنوں نے.
But in some way or the other, it has been established that for us to recite this is there.
اور اس بات کو طے کیا گیا کہ ہم ہماری نیت ہمارا رخ اللہ کی طرف کریں.
And the purpose of that is to renew this focus that my direction of heart should be towards Allah Taala alone.
اللہ کی طرف اپنا منہ کرنے سے مراد کیا فزیکلی منہ؟
What does it mean to turn my face towards Allah? Physical face?
یہ مراد نہیں ہوتا.
That is not the meaning.
کیونکہ فزیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منہ نہیں کیا جا سکتا. اینما تولوا فثم وجه الله.
Because we cannot face Allah Ta'ala with our physical face. Because wherever we face, Allah Ta'ala is there.
Allah Pak surat se subhan hai.
Allah Ta'ala is pure from having a face.
کوئی لمٹ نہیں ہے وہاں پہ, کوئی شکل نہیں ہے, کوئی صورت نہیں ہے.
No shape, no form, no face. Allah Ta'ala is pure from all that. There's no limit to Allah.
کیونکہ یہ اللہ کے لیے عیب ہے.
Because that is a defect for Allah.
ہمارے لیے کمال ہے, ان کے لیے عیب ہے.
For us to have a shape and face is an excellent quality.
جیسے اولاد ہونا ہمارے لیے کمال ہے, اللہ کے لیے عیب ہے.
Just like for us to have a child is an achievement, it's a great thing, but for Allah Ta'ala it's a great defect.
اس لیے فرمایا لم یلد ولم یولد.
That's Allah Ta'ala says, he was not born, he does not give birth.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب ہو جائے صورت ہونا, وہ صورت سے پاک ہے.
اللہ تعالیٰ is pure from having any shape, any form, any face.
تو ان کی طرف منہ کیسے کریں گے؟
So how can we face Allah?
تو کیا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ میرے دل کا رخ, میری محبت کا رخ, میرے تعلقات کا رخ, میرے جذبات کا رخ, میری فیلنگ کا رخ, سب کا رخ اللہ کی طرف ہے.
Meaning is I have turned the direction of my heart towards Allah alone, my emotions, my love, My desire to sacrifice is only turned towards what Allah.
मेरे मोहब्बत करने की बुनियाद और मेरी नफरत करने की बुनियाद.
The foundation and the basis of me loving someone or disliking someone is only Allah.
मेरे खर्च करने की बुनियाद, मेरे खर्च नहीं करने की बुनियाद.
The basis and the foundation of me spending or not spending is Allah.
मेरे ताल्लुक रखने की बुनियाद, मेरे ताल्लुक तोड़ने की बुनियाद.
The basis of my keeping relationship with someone or disconnecting my relationship, breaking relationship with someone is only Allah.
ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते थे.
This is what Ibrahim alayhisalam said.
और ये भी कहते थे, वमा अना मिनल मुशरिकीन.
And then he said, I am not from the mushrikeen.
मुशरिक के यहाँ दो मतलब हैं, मुफस्सिरीन ने लिखा है. एक तो ये कि मुशरिक जिस शिर्क में मुब्तला है उसका इनकार कर रहे थे. दूसरा मतलब ये है कि मेरी तवज्जो में मैं मुशरिक नहीं हूँ.
In my focus, in my direction of heart, I don't do shirk. I don't have any direction other than Allah.
वैसा दिल इब्राहिमी दिल कहलाता है.
That type of heart is called the heart of Ibrahim alayhi.
और उस दिल से देखना इब्राहिमी नजर कहलाती है.
If a person can see with that type of heart, then that is called the Ibrahimi vision.
बराहिमी अल्लामा इकबाल, बराहिमी नजर पैदा बड़ी मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें. वो कहते हैं कि इब्राहिमी नजर बहुत मुश्किल से पैदा होती है.
So the first part of this is that the vision of Ibrahim alayhisalam that we just described is very difficult to establish in our hearts.
क्यों? इस वजह से कि दिल में जितने हवसें हैं उतने बुत हैं.
Because to the extent of the desires in the heart, to that extent there are idols in the heart.
तो ये कह रहे हैं कि बुतों से तौबा करना और शिरकत से अपने आप को बचा लेना तब मुमकिन है कि जब दिल में कोई हवस जो है ना, कोई बुत अंदर मौजूद ना हो.
The only way this heart will only be focused toward Allah Subhanahu wa Taala is when now there is no desire left in the heart except Allah.
अगर दावत की मोहब्बत इस दर्जे में हमारे दिल में अल्लाह के लिए उतर जाए तो मेरे दोस्तों बताओ उसके असरात क्या होंगे.
Now if the love of Allah Subhanahu wa Taala penetrates
और दावत की मोहब्बत
and the love of the effort of dawah ila Allah penetrates into our heart to this extent,
और ये फर्ज है.
And this is fard. This is fard.
देखें हम इस फर्ज को अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे.
Now we have to see how much am I fulfilling this fard or not.
और ये तबका जो हमारे इस वक्त हम लोग मौजूद है अल्लाह की तौफीक से, अगर हमारे अंदर ही नहीं होगा फिर किसी के अंदर भी नहीं हो सकता.
And this gathering, the elite brothers who are chosen by Allah specifically for the effort of da'wah ila Allah, if this type of love is not in our heart, then it will not
इसके पैदा करने की दो सूरतें होती हैं.
You have to develop this.
एक अकल से तय कर देना.
So there are two ways of developing this. One is that we have to make up our mind.
सोच के माइंड बना लेना.
We have to make our mind accordingly.
और फैसला कर देना.
We have to make a decision.
और इसका ये आदमी पहले जिम्मेदार होता है, मुकल्लफ होता है.
And this is what a person is actually responsible for first.
क्योंकि तबीयी मोहब्बत उसके बाद में होती है.
Because natural love comes later, but at least
इसको कहते हैं शरई मोहब्बत. जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत शरई फर्ज है, उसके बाद तभी होगी.
First of all, we have to love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqlan shar'an. In other words, we have to make up our mind that we have love for Rasulullah. This now develops into natural love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ऐसे अल्लाह ताला के साथ है, असल इस्लाम में शरई मोहब्बत फर्ज है.
Same thing with Allah. First, we have to develop our mind and tell our mind we love Allah, and then it will develop into natural love.
यही हाल दीन की मेहनत के साथ है.
And this same rule applies to the effort of the outer world.
तो हमको अपने तौर पर इंटेंशन भी ये बात तय करनी होगी कि मुझे अल्लाह के दीन की मेहनत से सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी है.
That's why aqlan, our mind, we have to make up our mind and decide internally that we have love for the effort of dawah more than anything else.
जिसको हम यहाँ mind बनाना कहते हैं.
Where we say to make up our mind.
जब ज़हन बन जाएगा आदमी तसल्ली में आ जाएगा कि मुझे सबसे ज्यादा ये चीज चाहिए.
So when the mind is made, when a person is content, that yes, I have to love this more than anything.
यही हर कलमे के साथ है.
This is the same rule that applies to the
कलमे. यही हर अल्लाह की किताब के साथ है.
Same thing with Quran.
कलमे की कलमे से आदमी को कितना ताल्लुक है.
How much relationship does the person have with this kalima?
ये जो मजमा है, ये मजमा कलमा इखलास से पढ़ता है कि नहीं पढ़ता.
This gathering of brothers, do we read the kalima with ikhlas or not?
अगर कोई हम पर एतराज करे कि तू इखलास से कलमा नहीं पढ़ता तो कितना गुस्सा आ जाएगा.
Somebody tells us that you don't recite kalima with ikhlas. How angry we
हम नहीं पढ़ सकते, हम नहीं पढ़ रहे हैं इखलास से, हम नहीं पढ़े तो और कौन पढ़ेगा. मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इखलास का मतलब बताया है उसकी रोशनी में हम सोचें.
But the translation of ikhlas that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave for the kalima, the ikhlas of kalima, we have to look and see whether we fit that translation or not.
قِيلَ وَمَا إِخْلَاصُهَا يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَحْجُزَهُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ.
यही
हाल अल्लाह की किताब के साथ है.
The same rule applies with the Quran.
अल्लाह की किताब मानना ही खाली काफी नहीं है.
Just to believe that Quran is the word of and the book of Allah is not enough.
अल्लाह की किताब में जो हराम है, अल्लाह की किताब के हराम से बचने का नाम अल्लाह की किताब पर ईमान है.
To stay away from the prohibitions that Quran mentions to be prohibited, that is what it means to believe in Quran.
एक साहब से गीबत के कलिमात निकल गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने.
One person, he spoke some words of backbiting in the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया कि जो कुरान के हराम को हलाल समझे वो मोमिन ही नहीं है.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says the one who considers the haram of Quran to be halal, he is not even a believer.
من آمن من استحل بمحارم الله يهدو के अरबादर कि जो अल्लाह के हराम को हलाल समझ लिया वो मोमिन ही नहीं.
The one who considers the that which Allah made haram to be halal, and he has not even believed in the word of Allah.
इन बातों में फिट होना है मुझे आपको.
So we have to fit ourselves in these.
इसलिए मेरे दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि हम अल्लाह की मोहब्बत अपने अंदर लाएं.
That's why the first is that we have to bring the love of Allah Subhanahu wa Taala alone.
क्योंकि वही सब कुछ है.
Because he is everything.
सारे एहसानात उन्हीं के पूरी दुनिया में.
All the favors are from him.
वो रब है हमारे भी और कायनात के जर्रे जर्रे के भी.
He is our Rabb and the Rabb of every particle atom on the face.
सारी कुदरत उनके पास है.
All the power belongs to him.
सारे कमालात उन्हीं के पास है.
All the perfect qualities belong to him.
इसीलिए सारी तारीफें उन्हीं के लिए हैं.
All praise only belongs to him.
क्यों? इसलिए जबकि हमारा कमालात पूरे उनके हैं.
Why all praise belongs to him? Because all the excellent qualities belong to him.
वही सबके रब हैं.
He is the Rabb of everything.
वही सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं.
He is the most beautiful.
वही सबसे ज्यादा कमालात वाले हैं.
He is the most perfect.
पूरी कायनात में कोई भी नहीं है जो मोहब्बत की चीजों में से हो जो अल्लाह के साथ में जिंदा जमती है. सिर्फ अल्लाह से जमती है उसको देखा जाए.
There's nothing on the face of this earth that has the qualities that deserve our love except Allah.
इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह से मोहब्बत करना है.
That's why we have to love Allah.
और अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब अल्लाह के अपने को हवाले कर देना है. रसूल पर ईमान लाने का मतलब अपने को रसूल के हवाले कर देना है. उनकी तरफ से जो हुक्म आया आमन्ना और सद्दकना. इसलिए अहकाम को देखने की आदत डालना है, हालात को नहीं देखना है.
That's why we have to get ourselves used to looking at the commands of Allah and His Rasul, not looking at the conditions.
सारे मामले अल्लाह ने अहकाम पर रखे हैं.
Because in all the dealings of Allah with us are based on His commands.
सारे वादे अल्लाह तबारक व तआला ने आमाल के साथ जोड़े हैं.
All the promises of Allah Ta'ala are only connected to His commands.
इज्जत के अल्लाह ने वादे किए.
अल्लाह ताला has promised honor and respect.
गलबे के अल्लाह ने वादे किए.
अल्लाह ताला has promised dominance and victory.
अमन के अल्लाह ने वादे किए.
अल्लाह ताला has promised peace and security.
रिज्क में बरकत के अल्लाह ने वादे किए.
अल्लाह ताला has promised baraka and rizq.
दुश्मनों से हिफाजत के वादे किए.
अल्लाह ताला has promised protection from the enemy.
कितने वादे कुरान पाक में भरे हुए हैं.
How many promises of
Allah. हदीस मुबारक में मौजूद हैं.
In hadith, how many promises of
Allah. ये सारे वादे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों के साथ में किए.
All these promises are for the believers.
और आज ये वादे अल्लाह के हम नहीं देख रहे हैं.
Today we don't see these promises being fulfilled.
क्या मतलब? अल्लाह अपने वादे की खिलाफवर्जी करता है. यही बात है कि जो ईमान जिस ईमान पर ये वादे हैं वो ईमान की कमी हमारे पास है.
Are connected, we have not reached that level of iman.
इसलिए सबसे पहले मेरे दोस्तों अपने दिल के रुख को अपनी चाहत के रुख को बनाना है.
That's why we have to first rectify the direction of our heart. What do we love? What do we have the desire to sacrifice for?
और उसके लिए जिस इस माहौल में हम रहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेगा.
That's why when we put ourselves in this type of environment, then this type of
heart. बोलेंगे इसको सुनेंगे तो दिल में मोहब्बत आ जाएगी.
When we will talk about this, we will think about this, then this will be developed.
बाद में किसी चीज का तज़किरा करता है उसकी मोहब्बत आ जाती है.
Whatever a person talks about, the love of that comes into the heart.
और जब किसी से मोहब्बत होती है उसका तज़किरा करता है. ये दोनों लाजिम मलज़ूम हैं.
They are both connected with each other. इधर
जितनी अल्लाह की बड़ाई बोलेंगे उतनी दिल में उतरती चली जाएगी. और जितनी दिल में बड़ाई उतरती चली जाएगी उतना आदमी बोलने पे मजबूर होगा. यही हाल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है. यही हाल अल्लाह के दीन की मेहनत का है. तो इसलिए आज हमारे बड़े ये चाह रहे हैं कि जो दावत के तकाजे हैं उन पर लब्बैक कहने के वास्ते जो इस्तेदाद अंदर चाहिए वो इस्तेदाद लाना है अपने अंदर.
That the capability, internal capability that is required to say labbaik, I'm ready for every call of deen. We have to bring in that capability internally in
our hearts. And my dear friends, then, दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि इस मोहब्बत को इस्तेमाल करके इस काम को चलाना है, लेके चलना है और इस काम को फैलाने की जद्दोजहद करना है उन उसूल की रोशनी में, उन तरीकों की रोशनी में जो हमारे बड़े हमें बता रहे.
And the second thing is that with this love of Allah Ta'ala in the heart, we have to do this effort of da'wah ilallah. We have to spread and establish this effort of da'wah ilallah according to the principles and the guidelines that have been laid out and prescribed to us by our followers.
कितनी मेहनत करना है?
How much effort we have to make?
आदमी सोचता है, सवाल करता है कि कितना करना है? अब पहले लोग एक जिंदगी में 4 महीने बोले थे, अब हर साल 4 महीने बोल रहे हैं.
The question comes, how much effort we have to make?
उसके बाद और तकाजे बढ़ा रहे
हैं,
बोल रहे हैं कि कुर्बानी और बढ़ाओ.
तो
हर आदमी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि कितनी मेहनत करना है. तो जो हमारा महबूब है उसी से क्यों ना पूछे कि कितनी मेहनत करना है. अल्लाह से पूछो, अल्लाह खुद ही बताएगा कितनी करना है. तो राजी तो अल्लाह को करना है ना, तो अल्लाह जितना बोले उतना करना है. और जो अल्लाह बोले वो करना है. अब आप सोचिए कि अल्लाह क्या बोल रहा हूँ. कहने जरा आगे बढ़ जाओ. सो तो नहीं दे पीछे, सो तो भी आगे बढ़ा दे. आ जाए आगे बढ़ जाए.
Yes, brothers, please move forward to the empty spaces, inshallah.
हर आदमी के दिल में यह सवाल आ सकता है कि कितना करना है भाई, उतना काम करेगी. मेरे दोस्तों, जब मोहब्बत दिल में होती है उसकी खुसूसियत ये होती है कि आदमी उसके लिए कुछ यादगार करना चाहता है.
The special quality of love when we love someone is that a person wants to do something memorable.
वो ये दिखाना चाहता है कि मैं कितना आपको चाहता हूँ.
He wants to show the one who he loves that how much I can do for you.
और मैं कितनी मेहनत आपके लिए कर सकता हूँ.
But how much effort I can do for you. He wants to show his beloved.
और कितनी मशक्कत और तकलीफ आपके लिए बर्दाश्त कर सकता हूँ.
How much pain and difficulty I can endure for you.
कितना आपके लिए बेइज्जत हो सकता हूँ.
How much I can get disgraced for your sake.
हमेशा हर जमाने में मोहब्बत करने वालों ने यह सोचा है.
In every era, those who loved Allah thought in this era.
और इसको साबित किया है.
And they made this come into
existence. और संख्य दिखाया है.
And they showed us that this is.
अंबिया अलैहिस्सलाम की शान यही थी.
This was the excellent feature of Anbiya alayhi
wasallam. हजरत सहाबा की शान यही थी.
This was the feature of sahaba.
वो देखते थे कि हम कोई ऐसा ऐसी चीज हो जाए अल्लाह के लिए कि हम कह सके कि अल्लाह को देखो आपके लिए हमने ये किया है.
They used to wait for those opportunities of sacrifice so that I can do it and show Allah, Allah, this is how much I love you.
हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की जिंदगी क्या है, यही तो बताती है.
The entire life of Ibrahim alayhi salam shows us this.
इब्राहिमी मिजाज क्या है, वो यही तो है।
This is the mizaj Ibrahim, the temperament of Ibrahim
अलैहिस्सलाम। किसी की परवाह नहीं थी उस बंदे को।
He didn't care about anyone।
ना बादशाह की थी।
Didn't care about the king।
हालांकि बादशाह वो था वो जिसने पूरी दुनिया पे हुकूमत की।
Even though the king of that time was such that he ruled the whole world।
उसकी विदारत उनके लिए तैयार थी।
And the ministry of that kingdom was available for Ibrahim अलैहिस्सलाम।
मगर उन्होंने उसको छोड़ दिया।
But he left।
अपने कौम की परवाह नहीं की, अपने खानदान की परवाह नहीं की, अपने माँ बाप की परवाह नहीं की, और फिर आपको पता ही है कि फिर अपने बीवी बच्चों की भी परवाह नहीं की, और फिर अल्लाह के लिए क्या करना है वो बता दिया गया, छोड़ दो तो छोड़ दे। और फिर अल्लाह ने दुनिया वालों को दिखाना चाहा कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है,
the lover can do for him.
Okay, अपने बच्चे को ज़बह कर दो।
And then he said, now slaughter your son.
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया कोई।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम didn't ask Allah question.
कोई तौजीह नहीं की।
He didn't make any interpretation.
हालांकि अल्लाह ने इशाराती ज़ुबान में कहा है, सदातन भी नहीं कहा है।
Even though Allah Ta'ala didn't command him directly and clearly, rather it was a little bit ambiguous.
क्यों, इस वास्ते कि वही नहीं आई डायरेक्ट, हालांकि वो तो पैगंबर है, वही आ सकती थी। ख्वाब में उन्होंने देखा, तो ख्वाब तो ताबीर वाला होता है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसकी कोई ताबीर दूसरी निकाल सकते थे। वो समझ गए कि मुझे इशारा थी जुबान में वो क्या बोल रहे
थे,
असल में वो चाहते क्या है।
What does Allah really want from you?
अपने बेटे को ज़ुबा कर दो।
Allah
कि जी सरकार में हाजिर हूँ।
Yes, O Allah,
आप अंदाज़ा फरमाइए क्या?
Can you imagine what is happening here?
इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि हमारा वफादार इब्राहिम।
Allah Ta'ala called Ibrahim alayhi salam Alladhi Waffa, the one who is loyal and fulfilled every demand that was presented
to him. और हमारे अंदर अजीब बात क्या है मालूम? हमको मिल्लत इब्राहिम कहते हैं।
And what is the strange thing about this ummah is we are called millat ibrahim, the same pattern and religion of Ibrahim alayhi salam is for us.
Quran Pak mein hai millat abikum ibrahim,
millat abikum ibrahim.
अबे हम तो मिल्लत मोहम्मद है।
We are the deen, we have the deen of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, millat ibrahim.
बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमें मिल्लत इब्राहिम क्यों कहा गया?
Many people ask this question, why we are called millat ibrahim?
मिल्लत हमारा लकब है।
Millat is our title.
लकब जो होता है वो खुसूसियात की बुनियाद पर होता है।
The title is only given based on special features.
किसी आदमी के साथ में एहतराम जाहिर करने के वास्ते कुछ अल्फाज वो होते हैं जो आप उनकी बड़ाई को अपनी तरफ से बताते हैं।
If you want to give a person, a very high level person, a very honorable person a title, then you give him that title in order to express to him what qualities he has.
तो दो किस्म के होते हैं। एक वो जो आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं खामखा, और एक वो जो उनकी खुसूसियत और क्वालिटी होती है। किसी को अगर यूं कहा जाए वो शेखुल इस्लाम है, इसका मतलब ये है कि पूरे इस्लाम की तर्जुमानी करने वाली शख्सियत है वो।
दिस मींस दैट इंडिविजुअल इज द पर्सन who basically guides the entire Muslim ummah.
किसी को हकीम उल उम्मत लकब है।
Somebody is called हकीम उल उम्मा।
हकीम उल इस्लाम लकब है।
हकीम उल इस्लाम।
हकीम उल उम्मत मतलब पूरी उम्मत के जो मिजाज है, जो उम्मत की हालत है, जो उसका स्टेटस है राइट नाउ, वो जानते हैं अच्छी तरह से। हकीम उल उम्मत जो बोलते हैं।
A person is only given the title of हकीम उल उम्मा when he understands the temperament and the situation and the conditions of the entire
और उसका इलाज करने की उसके पास सलाहियत है।
And he has the ability to treat and offer treatment for the condition of the ummah.
ये अलकाब होते हैं जो खुसूसियत की वजह से होते हैं।
These are titles that are given to them because of their special
quality. ये लकब हमारा है, मिल्लत अबीकुम इब्राहिमी मिल्लत है हम।
So our title is we are millat ibrahimi.
इसका मतलब क्या है कि जो इब्राहिमी मिजाज है वो हमारे पास है।
That shows that the mizaj and that zeal to sacrifice, that temperament of Ibrahim is ingrained within us.
मतलब ये है कि हम अपने स्केल को ही नहीं पहचाने कि हम क्या कर सकते हैं।
That means it is ingrained in us, but we have not realized what we can do.
हम इब्राहिमी कहानियां लिख सकते हैं दुनिया में। इब्राहिमी तारीफ दोहरा सकते हैं।
We can talk about the history of Ibrahim alayhi salam. हम ऐसी
कुर्बानियां दे सकते हैं जो इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम की वे तर्जुमानी करने वाले या उनकी नकल करने वाले
And that same type of zeal that Ibrahim
alayhi salam showed. ऐसी कुर्बानियां मेरे दोस्तों सहाबा देते थे दीन के वास्ते कि बस आप अंदाजा नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते.
Such sacrifice sahaba offered to the deen that we cannot even fathom and recognize.
जान, माल, इज्जत, जज्बात, ख्वाहिशात सब तज देते.
Life, wealth, honor, reputation.
बीवी, बच्चे, किसी चीज की परवाह नहीं होती थी अल्लाह के दीन के सामने.
Care about anything when it came to the.
ये काम हो जाए.
Just the work of deen should happen.
पूरे सहाबा की तारीफ से भरी हुई.
Look at the history of Sahaba. All of this.
Sahabiyat ki tarikh isse bhari hui hai.
Sahabiyat also used to do the same thing.
अब अंदाजा फरमाइए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में तशरीफ ले जा रहे, एक औरत ने अपना बच्चा पेश किया, मेरे पास और कुछ नहीं है देने के वास्ते, इसको ले जाओ, जब तीर आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो इसको सामने कर दे.
To Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, said, Ya Rasulullah, use my child. When a spear or an arrow comes in your direction, then use my child as a shield for you.
अगरचे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल नहीं किया, लेकिन उसने ऑफर कर दिया.
Even though Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not accept that offer, but at least she presented that offer.
और ये कुर्बानी उनकी सिर्फ बोलने की नहीं थी.
And their sacrifices were not only verbal.
वो हकीकी जज्बात थे.
They came into reality.
साहबा की एक जमात एक जगह पहुंची हुई थी अल्लाह के रास्ते में. दुश्मन से लड़ाई हो गई.
And a fight happened with the enemy.
उन्होंने दुश्मन के किले को मुहासिरे में ले लिया.
And the Sahaba, they surrounded one of the forts of the enemies.
और बहुत दिन हो गए किला फतह नहीं हो रहा.
And many days the enemy would not come out.
दुश्मन ने बहुत खाना पीना जमा कर लिया और अंदर हो गया, दरवाजे बंद कर लिए उसने किले के और वो अंदर बैठा हुआ आराम.
The enemies, they gathered a lot of food, they're sitting inside the fort, they're not opening the door. And for many days, Sahaba are just surrounding it outside, but victory is not achieved.
जो भी कोशिश करता वो ऊपर से तीर बचा छोड़ते और आदमी को मार देते.
Whoever tries to come in, then from top the enemy throws a spear or an arrow.
किसी के समझ में नहीं आ रहा था.
So, sahaba did not know what to do.
तो जो अमीर साहब के भाई थे उनके जहन में एक आइडिया आया.
So, the brother of the Amir, one thought came to his mind.
वो अमीर साहब के पास पहुंचे.
He came to the Amir sahab.
उन्होंने कहा कि मेरे जहन में एक आइडिया आया इसका.
He said, there's one idea that came in my mind.
वो ये है कि वो इन तीरों की बरसात में मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा.
He said that while these arrows are showering down upon me, in that condition I will ascend this building, this fort,
aur wahan se kood jaunga,
and I will from there jump inside,
aur wahan se darwaza khol dunga,
and I will open the door.
Kehne lage pehle to tu chadh nahi payega ke teeron se gir jayega.
Lagne sab se that you will not be able to ascend because these arrows will knock you down.
कहने लगे आप इसकी परवाह मत करो.
You don't worry about that.
तुझे तो पता है कि 150 तीर लगेंगे तो तेरा क्या हाल होगा.
Don't you know that if 30, 40, 50 arrows pierce your body, what's going to happen to you?
मुझे पता है.
I know what's going to happen.
कहने लगे इतनी ऊपर वाली दीवार से नीचे कैसे कूदोगे.
So then how are you going to jump down from such a high wall?
कहने लगे मुझे हिम्मत है उसकी.
He said, I have courage to do that.
अगर ये तूने कर भी लिया तो तुझे दरवाजा कौन खोलने देगा.
He said, even if you do that, then who's going to allow you to open the door?
और जब दरवाजा खुलेगा तो जब हम दाएंगे तो तू कैसे अपने आप को बचा पाएगा वहां से, काट कैसे
जाएगा.
कहने के अमीर साहब ये सब चीजें आप छोड़ दो, सिर्फ मुझे इजाजत दे दो. मैंने अपना अंजाम सोच लिया है. कहने को मैं तेरा भाई हूँ, मुझे फिक्र है कि जब तू दरवाजा खोलेगा और हम जाएंगे घोड़ों के साथ में तो क्या होगा तेरा.
I'm afraid that when you will open the door, if you get to that point, and we stampede in with the horses, what will happen to you?
कहने लगा आप इसकी फिक्र मत करना.
He said, don't worry about that.
मैं तो चाहता हूँ कि मेरे टुकड़े हो जाएं.
I want that I be broken into pieces for the sake.
ताकि ये टुकड़ों को लेके कल अल्लाह के मैदान हशर में हाजिर हो कि परवरदिगार देखो तुम्हारे लिए ये किया है मैंने ये हदिया है मेरा.
So that I can present these pieces of my body in the court of Allah on the day of judgment. Oh my Allah, this is what I have done for you.
क्योंकि हदीस में है कि जैसे मरोगे वैसे उठाया जाओगे.
शहीद
अपने जख्म के साथ उठेगा.
So
अगर उसके जिस्म के टुकड़े हो गए हैं तो वो टुकड़ों के साथ उठेगा. क्योंकि वहाँ मोहब्बत ही का तो नंबर मिलना है.
Because on that day we need to earn the love of Allah.
और उसका सबूत भी देना है
Allah,
और उसका प्रूफ देना है कि हमने आपको कितना चाहा है. और उसी एतबार से अल्लाह इनाम देने वाले हैं. अच्छा ये सिर्फ जुबानी खर्च नहीं हुई, जुबानी जमा खर्च नहीं था. ये इमाम अमीर साहब ने इजाजत दे दी, वो चढ़ गए उसपे और उनके चढ़ते चढ़ते उन पर इतने तीर बरस गए कि उनका नीचे उतरना मुश्किल हो गया दूसरी तरफ से.
And so many arrows came down upon him that it became very difficult for him to go to the other side.
उसी हालत में वो गेट तक पहुंचे.
But still he reached and jumped down.
और उसके बाद उन्होंने गेट खोल दिया.
And he opened the door.
और आवाज लगा दी.
And he announced.
और सब इंतजार में थे सहाबा, वो अंदर घुस गए.
सहाबा were waiting for that call. They entered in.
और अल्लाह पाक ने किला फतह फरमा दिया.
And Allah Taala caused the fort to be conquered.
जब किला फतह हो गया तो अमीर साहब ने अपने भाई को तलाश किया.
When the victory was achieved, then the Amir Sahab was searching for his brother.
तो अमीर साहब के भाई साहब जो है ना छोटे छोटे पीसों में मिले होंगे. क्योंकि पूरे घोड़ों के टांग पैरों के अंदर वो आके टुकड़े हो गए थे, पीस पीस हो गए थे.
अमीर साहब found his brother and only pieces of his body were remaining because of the stampede of the horses that immediately entered.
आप अंदाजा कीजिए मिल्लत इब्राहिमी कातक जाती है. दावत के काम करने वाले के जहन में कुछ ऐसा जुनून चाहिए.
This is the type of focus and this is the type of fervor that every da'i should have.
Ke Allah ke liye badi se badi qurbani hum de de.
Kuch
karke mare, marna to hai hi, kuch karke mare.
We have to die anyways. We have to do something and then die.
खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत मुबारका में गौर फरमाइए, ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी. हम सब जानते हैं कि हमजा रजी अल्लाह तआला ने हुजूर के महबूब चचा थे. आप अपने अब्बा की जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते थे. क्योंकि अभी तक हजरत अब्बास मुसलमान नहीं हुए थे, वो तो बाद में जंग बदर के बाद हुए. अबू तालिब का इंतकाल हो गया था और ये दूसरे थे वो तो इस्लाम में नहीं थे. तो एक हजरत हमजा मुसलमान थे और वालिद साहब को तो देखा ही नहीं हुजूर ने. इसलिए हजरत हमजा को अपने अब्बा की जगह समझते, बहुत मोहब्बत करते थे. और हमजा भी आपसे बहुत ही मोहब्बत करते थे. आपको पता है कि ग़ज़वे उहद में क्या हो गया?
Everyone knows what happened in the expedition of
Hamza. Hamza رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے.
Hamza رضی اللہ عنہ was martyred.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ ہوا جس کی حد میں.
Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم was so sad and grieved over this that there's no we cannot explain.
اور دشمن بھی جانتا تھا کہ حمزہ سے ان کا تعلق کیسا ہے.
Even the enemies knew how much Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم loved Hamza رضی اللہ عنہ.
تو حضور کو ستانے کے لیے دشمن نے حمزہ کے ساتھ بے حرمتی کی.
That's why just to cause pain to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم the enemies they disrespected the body of Hamza رضی اللہ عنہ.
unka musla kar diya.
They mutilated Hamza رضی اللہ عنہ.
unke naak kaat di gayi.
They cut his nose.
unke kaan kaat diye gaye. unke hont kaat diye gaye.
They cut his lip.
unka seena cheer diya gaya.
They split open his chest.
usme se jigar nikal liya gaya.
And they removed the liver.
aur jigar ko chaba ke bataya gaya ki dekho humne Hamza ke sath ye kiya.
The liver was chewed. And it was shown that this is what we have done with Hamza.
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मंजर को देखा तो आप बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए. जब उनके जनाजा लाए उनकी बॉडी लाई गई. आपने 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी होंगे. आप इनसे ताल्लुक का अंदाजा फरमाइए. हुजूर ने उसके बाद एक बात फरमाई जज्बात में. फरमाया कि अगर मेरी फूफी हमजा की बहन अगर मेरी फूफी के बर्दाश्त न करने का मुझे डर न होता तो मैं हमजा को दफन न करता.
He said this shows how much he loved Hamza رضی اللہ عنہ that if it was not for the fear that it would not be able to be tolerated by my aunt, in other words, the sister of Hamza radiallahu ta'ala anhu, and I would not even have buried Hamza
radiallahu ta'ala anhu.
And I would have left him in the jungle so that the predatory animals would come and just eat up his body.
Aur parinde inka gosht noch le.
And the scavenger birds would come.
Aur bagair dafnaye main inko chhod dun.
I would have left him without being buried.
Taaki kal qiyamah mein jab Allah ke samne main aao, tumhe kehne chuko ke parwardigar ye hadiya laya hu aapke liye.
So that on the day of judgment I can tell Allah, oh Allah, this is my uncle I have brought to you.
To mere dosto, Allah se mohabbat karne par Allah ke liye kya karna hai? और अल्लाह के लिए क्या कुछ यानी हमको करना चाहिए, सोचना चाहिए, वो जज्बात जब तक हमारे अंदर नहीं आएंगे तो मेरे दोस्तों काम के लिए कुर्बानी को कैसे तैयार होंगे हम?
Make up our mind to sacrifice for Allah subhanahu wa ta'ala.
इसलिए खुद अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हम उनके लिए कितना काम करें.
That's why Allah ta'ala himself wants us to do the work of his deen.
Quran ये कहता है कि अगर तुम मर सकते हो तो मर जाओ.
Quran says that if you're able to die for Allah, then go ahead and die.
आप अंदाजा कीजिए कितना चाहिए.
So imagine how much we are required to.
और फिर अल्लाह ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे ना तो दो वादे हैं मेरे.
Allah ta'ala says if you die in the for the sake of Allah, for me, if you die for me, then there are two promises I will give you.
एक तो ये कि मैं तुमको हिदायत दूंगा.
I will give you hidayah.
जी बात है. एक आदमी मर गया, अब हिदायत देने का क्या है?
This is very strange that after a person dies, what does it mean to have hidayah?
और दूसरी बात ये फरमाई, मैं तेरे हालात बना दूंगा.
Second thing is Allah Taala says that He will rectify our conditions.
ये उससे अजीब बात है.
That's even more strange.
भाई अब जिंदगी नहीं है तो हालात बनने का क्या है?
The person is not even alive, then what does it mean that his conditions will get better?
इससे पता चला मेरे दोस्तों कि हालात तो कुछ भी नहीं है यहाँ के और हिदायत अभी कुछ भी नहीं है, बहुत बाकी है.
That shows that the hidayat in this life, the conditions getting better in this life is nothing compared to how much hidayat and how much recognition of condition we need after death.
हिदायत तो मरने के बाद हमको और चाहिए.
We need more guidance and hidayat after death.
अगर हिदायत न हो तो फुलसिरात पे कैसे चल पाएंगे?
हिदायत
न हो तो ज़ुलुमात हशर के अंदर कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? हिदायत न हो तो जगह जगह कस्टम्स लगे हुए हैं हमारे अमाल का जायजा लेने के लिए, हम वहाँ से कैसे निजात पाएंगे? पचास हजार साल का वो दिन है.
That's one day is equal to 50,000 years.
और हर मौका जो है ना वो हजार साल का है.
And every stage, every stop is 1,000 years.
इसलिए फरमाया वल्लज़ीन कुतिलु फी सबीलिल्लाह फलन युज़िल्ला अमालहुम. जो मर जाएं अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह उनकी अमाल जाया नहीं करेगा.
Allah Taala says the one who dies in the path of Allah Subhanahu Wa Taala, then Allah Taala will not waste his amal good deeds.
सयहदीहिम, उनको हिदायत देगा.
Allah Taala will guide him.
हम सबको हिदायत की जरूरत है.
You all need hidayah.
नूर ईमान की जरूरत है.
We need the light of iman.
वयुस्लिहु बालहुम, और उनके हालात सही कर देगा.
अल्लाह ताला will rectify their condition.
हमारे हालात जगह जगह कदम कदम पे हालात है वहाँ पे. अकबात है, फलक ताम अल अकबा है, अकबात और घाटियाँ हैं.
We have a lot of difficult stages in akhirah.
वयुदखिलुहुम अलजन्नत अरफा लहुम, और उनको दाखिल करेगा जन्नत में जिसका तारुफ करा दिया. तीसरा वादा, ये तीन है, दो हिसाब मान जाता हूँ.
The third promise is Allah Taala will cause them to enter into Jannah. That Jannah that Allah already introduced to them in this world.
उसके बाद फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम.
After that Allah Taala says, O you who believe in Allah, O you who believe, if you help Allah, Allah will help you.
या अय्युहल लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह वाली आयत, ये आयत के बाद है.
This word, this ayat, if you help Allah, this ayat is after those three promises.
तो हम जो है ना वो इसकी सुना इसको पढ़ते नहीं है, खाली इंतंसुरुल्लाह यंसुरकुम पढ़ते हैं. पहले से पढ़ना चाहिए.
We don't even read those three ayat before intansurullah yansurukum. In fact, we should first read those three ayat and then read intansurullah yansurukum.
Allah farma intansurukum ka matlab wahan ja ke baith raha. Ye teen cheeze bayan karne ke baad Allah farma rahe, tum meri madad karo, main tumhari karunga.
Allah Taala,
aur itni karo ke mar jao.
Allah Taala says if you make such an effort to that extent that you now die for the deen of Allah, then that is helping Allah Ta'ala. If you help Allah, Allah will help you.
In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, aur tumhare qadam jama dega.
If you help Allah, Allah will help you, and Allah Ta'ala will keep your feet firm.
इसलिए मेरे दोस्तों कुर्बानी देने के लिए तैयार होना है.
So you have to be ready to offer a sacrifice for Allah.
जब तक जुनून ना हो काम करने का इस मजमे में, मेरे दोस्तों काम नहीं हो सकता. हर चीज का जुनून लगना पड़ता है बालों को. अल्लामा इकबाल का एक शेर और याद आ गया, वो भी सुना देता हूँ, तर्जुमा तो मुश्किल होता है. लेकिन उन्होंने फरमाया कि पीर रूमी से हुआ है राज मुझ पर मुंकशिफ, पीर रूमी से हुआ है राज मुझ पर मुंकशिफ, लाख हकीम सर बजे एक कलीम सर बरकब. थोड़ा सा तर्जुमा बता देता हूँ उसका. माना रूम को पीर रूमी कहते हैं, कह रहे मैंने उनसे जो बात समझी है, राज जो समझा है वो ये है कि एक लाख आदमी अपने रिजर्वेशन के साथ, अपने तहफ्फुज़ात के साथ अगर चले किसी चीज में, तो उसको सर को जेब में रखना पड़ता है, यानी पॉकेट पे नजर रखना. तो ऐसे लाख आदमी जो अपने सर को अपने जेब में रख के चले, उनसे एक आदमी जो सर से कफन बांधा हुआ हो वो उतना काम करता है. पीर रूमी से हुआ है राज मुझ पर मुनकशिफ, लाख हकीम सर बजेब एक कलीम सर बकब. एक लाख आदमी जो अपने तहफ्फुज़ात के साथ में चलने वाले हो, एक आदमी जिसको किसी की परवाह ना हो सिवाय काम के जुनून के, वो एक आदमी से उतना काम अल्लाह पाक उठाए.
100,000 people who are moving forward to accomplish a task, but their mind is on their pocket, they are hesitating, they have reservations, they are not moving forward except with their mind on their pocket and with hesitation. Then compared to them, they are on one side. But one person who has no other thought except the effort and the task at hand is not looking at his pocket. He has tied He has basically tied the shroud around his head. In other words, he has no other thought except accomplishing the task. This one person can achieve much more than that 100,000 people.
मेरे मजमा ये दो, ये सबसे कफन बांधने वाला मजमा है. मेरे दोस्तों ऐसी कुर्बानी चाहिए. बताओ 4 महीने का मुतालबा क्या है इसके मुकाबले में? तो कौन कौन साथी है जो 4 महीने अब तक नहीं लिखा है इसमें से?
जरा
हाथ उठा दें कि भाई हमने अभी तक नहीं लिखा है.
So say that we have not yet given our name for 4 months. Raise your hands, please. Those who have not yet given their name.
So, इतने नाम तो हमको लिखना ही पड़ेगा ना. इंशाल्लाह आप लोग लिखने ये नाम. अल्लाह पे भरोसा करके लिखा दो. अल्लाह पाक अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हौसला दे और कुर्बानी का जज्बा दे. करेंगे तो मेरे दोस्तों इस मुल्क में अल्लाह इस्लाम को फैलाएगा, दीन रोशन हो जाएगा, मुसलमानों का तहफ्फुज़ होगा, इस्लाम का तहफ्फुज़ होगा, इस्लाम मुस्तमिश होगा. इस वास्ते कुर्बानी के लिए तैयार होना है. तो जो जो साथियों ने अभी तक नहीं लिखाया इस मौके पर, उनसे गुजारिश है कि वो अपने नाम लिखा दें. अल्लाह जिदाया फैल दे आप सबको, सब तरतीब से लिखा दो हिम्मत करके.